तात्पर्य श्री कृपा बुद्धि श्री श्रीमते श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण से प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। आचार्य श्रील प्रभुपाद द्वारा क्योंकि श्रीमद् भागवत श्रील वेद व्यास जी की विशिष्ट कृति है अथवा विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्रील व्यासदेव अल्पज्ञ स्त्रियों शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत उन सबों से दिव्य है क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है अथवा पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमता पूर्ण एवं प्रासंगिक है। हम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजनि शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप गदामयम तथापि स्वप्रांतिक वंदे श्री गुरु शूल पद कमल श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीव साधवैतम साधवदूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पारहान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गोगरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुदे देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पत्र विष्ट कृपा सिंधु भय वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिराधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। हम शुरुआत अभी उनका शुरुआत लेने दो लेने दो आदि बोलते अभी कृष्ण कहता ही है फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। एक बार श्री प्रभुपाद जो मंदिर में जब प्रवचन दे रहे थे उसी समय जू टेम्पल का कंस्ट्रक्शन का सब क्रिया चल रहा था तो आवाज भी आ रहा था। तो किसी ने कहा कि वो बंद कराए क्या प्रभुपाद, तो प्रभुपाद ने कहा नहीं रहने दो, दैट इज ऑल्सो कृष्ण कीर्तन बिकॉज द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज गोइंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। इसलिए जो कुछ कृष्ण की सेवा में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वो सब कृष्ण कीर्तन है। तो वैसे आज के इन श्लोकों में जहां पर किसी कृष्ण कीर्तन को आगे बढ़ाने के लिए शौनक मुनि के सामने सुत गोस्वामी के सामने शौनक मुनिगण वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रश्न होते हैं दो प्रकार के, एक होता है चुनौती पूर्वक, दूसरा होता है जिज्ञासु पूर्वक। तो जो जिज्ञासु पूर्वक जो प्रश्न होता है वो सबसे उत्तम होता है और उसी को ही श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं। वास्तविकता जो शिष्यगण होते हैं, वो शिष्य अपने गुरु के पास जब प्रश्न करते हैं तो उसका प्रश्न जिज्ञासु पूर्वक होना चाहिए, ना कि उसकी विद्वत्ता को परखने के लिए, ना ही उन्हें उनको उनके विद्वान के बल पर उसे हराने के लिए। तो जो इस प्रकार के जो चुनौती पूर्वक प्रश्न होते हैं, उस प्रश्न का उत्तर अगर उसे प्राप्त भी हो जाएगा तो उसे उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा। और भक्तगण अगर कितने भी उस व्यक्ति को अगर प्रचार करेंगे, जो चुनौती पूर्वक प्रश्न करते हैं, उन लोगों को कितना ही प्रचार करेंगे तो भी वो अंत तक अथवा समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो जब भी वो प्रश्न करेगा तो वो प्रश्न करते वक्त उसे उत्तर भी देंगे तो वो दूसरा प्रश्न कौन सा पूछूं वही सोचेगा। अगर वो उत्तर सुन भी रहा है लेकिन सुनते वक्त उसका कान उत्तर में नहीं लगा रहेगा या मन उत्तर में नहीं लगेगा, मन ये लगेगा कि मैं दूसरा प्रश्न क्या पूछूं। विल कॉन्स्टेंटली मेडिटेट ऑन सेकेंड क्वेश्चन। तो इसीलिए वैसे व्यक्ति के सामने अगर उत्तर भी देंगे तो भी कोई लाभ नहीं है या समय की बर्बादी है। इसलिए बताया गया है कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, उसे सबसे पहले प्रणिपात ने न प्रश्न न सेवया, उसे पूरी तरह शरणागति को ग्रहण करते हुए प्रश्न को पूछना चाहिए। और तब जाकर गुरु क्या करेंगे, ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, तब जाकर वो दिव्य ज्ञान को प्रदान करेंगे। ऐसे हम देखते श्रीमद् भगवद गीता में भी, जहां पर प्रथम अध्याय जो है वहां पर कृष्ण ने कुछ कहा ही नहीं। वास्तविक भगवद गीता की शुरुआत होती है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। तो क्यों? क्योंकि प्रथम अध्याय में अर्जुन ने शरणागति को नहीं ग्रहण किया। प्रथम अध्याय में अर्जुन अपने अपने तौर तरीके से, अपने विद्वत्ता से वो नाना प्रकार के एक-एक तर्कों को पेश कर रहे थे, लेकिन जब अर्जुन जब पूरी तरह भौंकला गया, जब वो अपनी ही विद्वत्ता से परेशान हो गया, तब अर्जुन जब शरणागति को ग्रहण किए, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम धर्म सम्मूढ़ चेता, अब मैं धर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या, मुझे नहीं पता, अब मैं आपका शिष्य बन चुका हूं, तो कृपा करके आप मुझे समझाइए श्रेयस क्या है। यह श्रेयस चांद स्थितम ब्रूहि तन्मय, मेरे लिए सबसे उचित वस्तु क्या है ये मुझे समझाइए। तब जाकर भगवान कृष्ण ने भगवत गीता की शुरुआत की। तो वैसे ही जो प्रश्न होता है वो प्रश्न हमेशा जिज्ञासु पूर्वक में और जिज्ञासु पूर्वक होना चाहिए। ये जिज्ञासु पूर्वक और चुनौती पूर्वक के प्रश्न में अंतर क्या है? इसमें ये अंतर है कि चुनौती पूर्वक जो प्रश्न जो होते हैं वो लोग उसके अधिकारी पर संशय करते हैं। तो वो जो परंपरा में जो आने वाले जो व्यक्ति हैं उसके ऊपर वो डाउट करते हैं और वो संशय आत्मा विनश्यति। लेकिन जो जिज्ञासु पूर्वक प्रश्न होता है वो उसके अधिकारी पर संशय नहीं करता है। वो समझता है कि ये जो कह रहे हो सही कह रहा है, लेकिन कथम विजानी, हाँ कैसे मैं इसे समझूं, तो वो समझना चाहता है लेकिन कैसे समझे। तो उनका प्रश्न इस प्रकार होता है कि वो हमेशा अपने अधिकारी पर श्रद्धा रखते हुए वो इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। यहाँ पर जो शौनक मुनिगण वो इस प्रकार के यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जो दिव्य उपदेश जो कि श्रीमद् भागवतम का, इसका वास्तविक प्रारंभ कहाँ से हुआ, सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण से प्रारंभ किया गया। तो मैं श्रीमद् भागवतम को ऐसे दिव्य उपदेश के रूप में क्यों स्वीकारा गया है, श्रीमद् भागवत जो कि समस्त वैदिक साहित्य समस्त शास्त्रों का मूल सार के रूप में स्वीकारा गया है। बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति लोग इसे इस प्रकार वर्णन करते कि श्रीमद् भागवतम जो है वो समस्त वेदों का सार है। जैसे सनातन गोस्वामी पाद अपने पद में वर्णन करते हैं कि श्रीमद् भागवतम किस प्रकार है, तो वर्णन करते हैं कि समुद्र मंथन करने से जो अमृत निकलता है ठीक उसी तरह श्रीमद् भागवतम है। तो जैसे समुद्र मंथन करने से शुरुआत में क्या निकला था, अलाहल विष, तो वो जो हलाहल विष जो है उसकी तुलना की गई है नाना प्रकार के अनेक अनेक धर्म अर्थ काम के साथ। तो वो जो केवल चार पुरुषार्थ में जो जिसकी मति लगी हुई है वो इस ग्रंथ के अंदर वर्णन प्राप्त है। तो वो जैसे ज्ञान कांड, कर्म कांड इत्यादि ये सारे जो साहित्य है जो कि वेद व्यास जी के द्वारा रचना किया गया, जिसमें इंद्रिय विषय भोग का जो स्प्रिया जो बढ़ाती है, और वैसे सारे जो साहित्य और ग्रंथ उसकी तुलना की गई है हलाहल विष के साथ। और वेद व्यास जी ने ये सारे साहित्य की रचना की थी। तो वेद व्यास अर्थ यानी कि वेद व्यास, व्यास यानी कि विभाजन किया, किसको विभाजन किया, वेद को। तो वेद को उन्होंने चार भाग में विभाजित किया। तो शुरुआत में एक ही वेद था जिसे कहते यजुर्वेद, उस वेद को उन्होंने चार भाग में विभाजित किया, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, जिसके अंदर 1130 शाखाएं हैं। और उस हर एक शाखाओं में चार उपशाखाएं हैं, ब्राह्मण, अरण्यक, संहिता, उपनिषद, और हर एक उपशाखाओं में 1030 अध्याय हैं। तो ऐसे काफी उन्होंने वेद व्यास जी ने ग्रंथ की रचना की। लेकिन अब हमारे पास केवल 6% बचा हुआ है, तो बाकी जितने भी ग्रंथ है वो सारे ग्रंथ को जला दिया गया मुगलों के द्वारा। एक ऐसे सुनने में आता है कि इस मुगल जो मुसलमान लोगों को इस ग्रंथ को जलाने के लिए करीब 1 साल लगा। तो सोच सकते हैं कि वास्तविक कितने सारे ग्रंथ होंगे। रोज लोग उसे चूल्हा पकाते थे अपना, और वैसे सारे ग्रंथ जल के केवल 6% बाकी हैं। लेकिन उसमें भी हमारे पास वो 6% पढ़ने के लिए भी हमारे पास जो हमारा जो बचा कुचा जो जीवन है वो भी पर्याप्त नहीं है उस 6% को पढ़ने के लिए भी। इसलिए सबसे सरलता क्या है, सबसे सरल जो मार्ग जो है वो है कि केवल श्रीमद् भागवतम को सीधे पढ़ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं कि संसार के समस्त शास्त्र जल जाए कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है, केवल एक ही वस्तु रहना चाहिए, वो है श्रीमद् भागवतम। केवल श्रीमद् भागवतम रहने मात्र से वो संसार के समस्त कष्टों का निवारण हो सकता है। और ऐसे ये श्रीमद् भागवतम में ऐसी दिव्य शक्ति छिपी हुई है, इसके विषय में वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम की महिमा के विषय में कि जब बताया जाता है कि एक समय की बात थी कि जब नारद मुनि बड़े चिंताग्रस्त होकर जब नैमिषारण्य के यहाँ पर जो नैमिषारण्य ऋषियों से जब उनका जब मुलाकात हुआ, तब ऋषिगणों ने पूछा कि हे मुनिवर आप इतने चिंतित क्यों हो, तो नारद मुनि ने कहा कि मैं चिंतित इसलिए हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भक्ति देवी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य से चिंतित हैं, और वो चिंता देखकर मुझे चिंता सताया जा रहा है। तब उन्होंने कहा इसके लिए तो बड़ा सरल उपाय है ये सारी चिंताओं को हटाने के लिए। तो बोले क्या? तो बोले श्रीमद् भागवतम का पठन करना, इससे सारी चिंताएं हट जाएगी। तब उन्होंने रेफरेंस पूछा कि कुछ ऐसे प्रमाण है क्या, कोई ऐसे भूतकाल में किसी का इस प्रकार सदगति हुआ है। तब उन्होंने इस कथा को सुनाते हैं और वो था धुंधकारी का। तो ये बताया जाता है कि इस कथा आरंभ करते वो बताते हैं कि एक व्यक्ति था, एक ब्राह्मण व्यक्ति जो बड़ा अमीर बड़ा रहीस व्यक्ति था और उनकी पत्नी थी, मगर ये बड़ा दुखी था क्योंकि इनको एक भी संतान नहीं था और पुत्र विहीन होने के कारण ये हमेशा शोकाकुल में डूबा रहता था। एक समय वो जब तालाब के तट में जब बैठे थे उसी समय वहां पर एक ऋषि आए और उस ऋषि ने आकर उनको पूछा कि क्यों तुम इतने चिंतित हो। तो इन्होंने कह दिया कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। तब उन्होंने कहा कि वो दिव्य दृष्टि देखकर उन्होंने उसके पूर्वज प्रारब्ध वगैरह कर्म देखकर वो कह दिए कि तुम्हारे पास अब कोई पुत्र हो ही नहीं सकता, तुम्हारे 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र नहीं होगा। तो इन्होंने कहा लेकिन मुझे तो चाहिए। और इन्होंने समझाया भूतकाल में ऐसे बहुत से ऐसे इतिहास घट चुके हैं कि जिसको पुत्र हुआ और वो पुत्र से परेशान है। जैसे राजा अंग अपने पुत्र वेण से परेशान था और चित्रकेतु महाराज जो कि अपने पुत्र गुजरने के बाद शोकाकुल में डूब गया। तो कहा कि ऐसे इन लोगों की स्थिति घट चुकी है तो बेहतर है कि तुम इस विषय को भूल जाओ और एकमात्र भगवान की भक्ति में लग जाओ। तो भी ये माना नहीं, बोला नहीं मुझे एक संतान चाहिए। तब उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें एक फल देता हूं, इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना तो तुम्हें एक पुत्र होगा। और वो फल देने के समय पर फिर से उन्होंने कहा देखो सुन लेना मेरी बात कि तुम्हारे प्रारब्ध में कहीं पर तुम्हें कोई पुण्य प्राप्त नहीं हुआ है जिस पुण्य से तुम्हें पुत्र होगा, फिर भी मैं तुम्हें फल देता हूं। उस फल को लेकर गए, उन्होंने अपनी पत्नी को दिया और कहा कि इस फल को तुम खा लेना और इसे खाने से तुम्हें संतान होगा। तो ये बड़ा खुशी से उनके हाथ में दे दिया और दे के चले गए। तब उनकी पत्नी विचार करने लगी मैं इसे खाऊंगी तो मुझे मैं गर्भवती हो जाऊंगी और गर्भवती होंगी तो मैं कुछ कपड़े वगैरह धो नहीं पाऊंगी और घर का कामकाज ऐसे बाकी रह जाएगा और कुछ जानवर भी आ गया तो मैं अपने आप की रक्षा नहीं कर पाऊंगी। और इतना ही नहीं अगर सुखदेव गोस्वामी जैसा कोई बालक ने पेट गर्भ में जन्म ले लिया तो फिर तो समस्या बढ़ जाएगी, 14-12 साल तक तो निकलेंगे और मैं तो बीमार होके मेरा तो तबीयत खराब हो जाएगा। तो बेहतर है कि मैं नहीं। और वो बड़ी चिंता में थी। तब उसने में उनकी उनकी बहन आई, तब उस समय उन्होंने उनकी अपनी बहन को उन्होंने इस बात बताया कि मैं ऐसे ऐसे परेशान हूं। तो उसकी बहन भी गर्भवती थी। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे पास पैसे काफी है तो तुम क्या करो तुम अपने पैसे मुझे दे देना और मैं ये जो मेरा जो संतान है वो तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें दे दूंगी और इस प्रकार मेरा भी काम हो जाएगा तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तो बोले ठीक है लेकिन इसे फल का क्या करें। तब वो कहने लगे अरे ऋषि लोग ऐसे फल देते कुछ काम का नहीं रहता है, केवल नाम मात्र रहता है, इसे कुछ होने वाला है, गाय को खिला दो किसी पशु को खिला दो। तो उसने कहा कि उस फल को लेके गाय को खिला दिया और उसी के कुछ दिनों में उन्होंने भी एक ढोंग करने लग गई अपने पति के सामने कि मेरा भी मैं भी गर्भवती हो चुकी हूं। और कुछ ही महीने में जो उनको जब संतान हुआ, उनको एक गाय ने भी एक बच्चा दिया, इसी गाय ने। अब ये गाय ने जो संतान दिया, मानव का रूप था लेकिन कान जो था वो पशु का था, इसलिए उनका नाम पड़ा गोकर्ण। अब उनकी जो बहन को जो संतान हुआ, वो संतान उन्होंने उसकी माँ को, उसकी बहन को दिया, तब उस संतान को लेकर उन्होंने अपने ब्राह्मण पति को कहने लगे कि देखो मुझे संतान हो चुका है, और उसका नाम पड़ा धुंडकारी। अब ये धुंडकारी जो था बचपन से इतना शरारती था और इतना उसका दुष्कर्म था कि नाना प्रकार से उन्होंने केवल अपने जीवन में पाप क्रियाओं को ही उन्होंने इकट्ठा किया था, और ऐसे उनका जीवन बीत गया। और हुआ यूं कि उन्होंने कुछ वेश्या से उनका विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद उन्होंने उस वेश्या को अपने घर पर लाए, और बाकी जितनी 3-4 जो उनकी जो पत्नी थी वो सारी वेश्या थी। इन्होंने चारों लोग ने मिलकर योजना किया कि इसके पास पैसे काफी है, क्यों ना इसी को ही खत्म करके पैसे लूट कर भाग जाते हैं। और उन लोग ने ऐसा चाल रखा कि उनका वध कर दिया, उनको कुएं में धकेल कर उसे वध कर दिया, और फिर उन लोग वहां से पैसे लेकर भाग गए। अब ये धुंधकारी का शरीर जब छूट गया, तब धुंधकारी जो था वो अब भूत बन गया, अब भटकने लग गया उसी खोली में। तो उनका जो दूसरा भाई था गोकर्ण, जिनका कान गो यानी कि गाय माता के होने के कारण उनको उनका नाम पड़ा गोकर्ण। और तो उन्होंने अपने भाई के भाई को तारने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पाठ शुरू किया। तो श्रीमद् भागवतम का पाठ किए तो पूरे गांव वासियों को उन्होंने बुलाया, और अपने भाई को धुंधकारी को उन्होंने एक तंबू में, उन्हें एक बांस का एक स्थान था उसमें उसे बिठाकर उनको बैठने का एक स्थान दिया, उस स्थान पर बिठा दिए, और यहाँ पर इन्होंने कथा आरंभ की है। तो 7 दिन लगातार उन्होंने कथा कहा, और 7वें दिन के बाद वही जो बांस जो था वो फट गया, और गोलोक भगवान के धाम से विमान आ गया उन्हें लेने के लिए। और जब विमान आए लेने के लिए तो उनको बिठा दिया विमान में अकेला। तो गोकर्ण पूछने लगे, मेरा एक प्रश्न है, आप ऐसे कैसे जा रहे हो? तो बोला, क्या? बोले कि यहां पर तो भागवत कथा सुनने वाले कई लोग थे, मगर तुम अकेले व्यक्ति को लेकर जा रहे हो, इन लोगों को नहीं लेके जा रहे। तब उन्होंने कहा, इन लोगों ने जो श्रद्धा पूर्वक जो कथा सुना उसकी तुलना इस गोकर्ण के साथ की जाए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि गोकर्ण नहीं धुंडकारी के साथ तुलना किया जाए तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि धुंडकारी ने जिस श्रद्धा पूर्वक जो कथा को सुना, उस कथा को बाकी गांव वासियों ने नहीं सुना, तब इसके लिए मैं इन लोगों को नहीं लेके जा रहा हूं। फिर गांव वासी ने कहा, लेकिन यहां पर हमारे जो गोकर्ण हैं उनको आप नहीं लेके जा रहे हो, इनको तो लेके जाना चाहिए। तब वो पार्षद लोग ने कहा कि इनको अगर मैं लेकर जाऊंगा तो तुम लोगों को कौन तारेगा, तो तुम लोगों के लिए मैंने उन्हें छोड़ कर जा रहा हूं। और फिर गोकर्ण ने वापस 7 दिन का कथा रखा, और जब वापस उन्होंने श्रीमद् भागवतम रखा तो उसे इतने श्रद्धा पूर्वक सभी सुने कि उनसे लेने के लिए भगवान के धाम से विमान आया, पूरे गांव के गांव लोग सभी भगवत धाम चले गए। तो वैसे जो श्रद्धा पूर्वक का जो श्रीमद् भागवतम को अगर सुनता है तो उसकी मति, उसका जो चित्त है उसी क्षण शुद्ध हो जाता है। अब यहां पर अगर किसी का अगर श्रद्धा या मति अगर शुद्ध भी नहीं भी है, तो भी कोई समस्या नहीं है। बताया जाता है काम प्रसंगात मम वीर्य संवितो भवन्ति ऋतकरण रसायन कथा तोषणम अस अपवर्ग वर्तमणि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति। तो तीन इस भगवान के संदेश को सुनने से तीन बारी बारी से उसका प्रगति होता है। तो शुरुआत में जब भागवतम सुनते तो भले ही उसके हृदय में श्रद्धा नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो क्या होगा, भागवतम केवल सुनने मात्र से, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि किसी को अगर भाषा नहीं भी आता होगा, केवल भागवतम के ध्वनि को केवल सुनेंगे तो भी उसका चित्त शुद्ध होगा। तो केवल न समझने के बाद भी केवल भागवतम की ध्वनि को सुनने मात्र से चित्त शुद्ध होगा। जरा सोचिए कि अगर कोई भागवतम के अर्थ को समझकर अगर सुनेंगे तो क्या क्या शुद्धिकरण नहीं होगा, ऐसे उनका चित्त शुद्ध नहीं होगा। इसलिए बताया गया है कि अगर कोई श्रद्धा विहीन भी क्यों ना हो, अगर वो सुनता है तो भी उसका चित्त शुद्ध होगा। इसलिए बताया गया है कि शुरुआत में भागवतम संदेश सुनने से प्रथम क्या होगा, श्रद्धा, श्रद्धा उसकी जागेगी। श्रद्धा के बाद रति, भागवतम सुनने का उनके अंदर रुचि बढ़ेगा और मैं भागवतम कथा सुनूं, चाहे किसी भी कार्य में व्यस्त की ना हो लेकिन समय निकाल के भागवतम कथा सुनूं, रति उसकी बढ़ेगी और भक्ति, और अंत में उसका भगवान के प्रति भक्ति जागृत होगी। और ऐसे करने से ही हमारे अंदर जो अरति वो खत्म हो जाती है। जैसे परीक्षित महाराज बताते हैं दशम स्कंद में, ये श्रृणवताम पैति अरतिर्वि तृष्णा सत्वम च शुद्धेत अचिरेण पुंसा भक्तिर हरव तद पुरुषेश्च सख्यम तद एवं हरणम बदव मनयस्य चेता। तो भागवतम कथा सुनने के छह लक्षण बताते हैं। तो क्या क्या बताते हैं, ये श्रृणवताम अपति पहले तो नष्ट हो जाएगा, ये श्रृणवताम सुनने मात्र से नष्ट होगा। क्या नष्ट होगा, अचिरेना अरति वितृष्णा, जो अरति, जो हमारे अंदर जो अरति जो जमी हुई है, भगवान की कथा सुनने के लिए जो आलसपन जो भरा हुआ है वो पहले नष्ट होगा। क्योंकि शुरुआत में ऐसे ही होता है कि श्रोतागण वक्तागण सभी बैठे सामने सामने, और जैसे ही श्रोता कहना शुरू करता है, जैसे ही वक्ता कहना शुरू करता है श्रोता को, श्रोता की आंख बंद हो जाती है और आंख खुलती है महाप्रसादी गोविंद। एक भक्त बता रहा था कि मुझे हरे कृष्ण महामंत्र और भागवतम कथा सुनने से ज्यादा श्रद्धा है महाप्रसादी गोविंद। तो पूछा कि क्योंकि केवल महाप्रसादी गोविंद बोलने मात्र से प्लेट भी आ जाता और भोजन भी तैयार हो जाता है, तो उसमें ज्यादा श्रद्धा है। तो वैसे वो जो अरति जो जमी हुई है केवल सुनने मात्र से आंख बंद हो जाता है, तो वो जो अरति जो गुस्सा हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। हालांकि व्यक्ति भले ही अरति क्यों ना हो तो भी उसके लिए लाभ ही लाभ है। हाँ, अगर वो भागवतम क्लास में अगर उसको नींद भी आता है, अगर वो सो भी जाता है तो भी वो इतना निश्चिंत दिखता है, कोई टेंशन ही नहीं दिखता है उसके चेहरे पे। भागवतम क्लास में एकदम ना कोई टेंशन का, बाकी व्यक्ति जब सोते भी है तो पूरे टेंशन के साथ सोते हैं, लेकिन भागवतम क्लास में तो अगर ऐसे भी अवस्था किसी का तो भी नुकसान नहीं। एक व्यक्ति था जो हम इस प्रकार कथा में आकर बैठता था, जब भी यहाँ पर यह वक्ता जब शुरू करता था यह व्यक्ति आकर फ्रंट में बैठता था और फ्रंट में बैठकर सो जाता था। ये कहता था ये बड़ा उसे क्रोध आता था, लेकिन क्या करे, ये व्यास आसन पे बैठे सारे पब्लिक सामने है, अब ये इतना मेहनत से कह रहा है और वो व्यक्ति बैठ के सो जाता था। तो ये जब भी आता था तो ये कहता था आ गया है क्या, तो जब बेहतर बैठ गया है क्या, अब बैठ गया तो सो गया, फिर वो उठता था तो बोला उठ गया है क्या, और फिर जा रहा है अरे जा रहा है क्या। तो वो केवल भागवतम क्लास में केवल चार सुनता था, आ गया है क्या, बैठ गया है क्या, उठ गया है क्या, जा रहा है क्या, केवल चार शब्द सुनता था। तो हुआ यूं एक बार की बात है कि इसी व्यक्ति के घर में एक बार चोर ने आक्रमण किया। सारे चोर पूरा गैंग जमा कर बोला कि वो काफी धन छुपा के रखा है, इसके घर में चोरी करते हैं। तो उसके घर में डाका डालने के लिए पूरे के पूरे झुंड आ गए, और जैसे ही उनके घर की तरफ आया, ये बंदा सोया है और सोते हुए सपना देख रहा है। अब सपना क्या देख रहा है, वो यही देख रहा है कि वो सत्संग जा रहा है। अब वो सत्संग जा रहा है, वो स्वप्न देखते हुए वो कह रहा है आ गया है क्या। तो सारे चोर लोग बोले ये सोया है क्या जागा है, अरे नहीं नहीं सोया है, वो नींद में बड़बड़ता रहे, चुप चुप बैठ जा। तो बैठ गया है क्या, बोला अरे दिख रहा है लगता है। तो किसी ने अरे मैंने सुना है कि ये सत्संग वगैरह जाता है इसलिए सिद्धि वगैरह प्राप्त कर लिया होगा, सोते सोते भी देख रहा है। तो बोले चलो चलो उठो उठो। तो जैसे उठे तो बोला उठ गया है क्या, अरे भागो यहां से, अरे जा रहा है क्या। और सारे सारे चोर दोबारा कभी नहीं आए। बोले कि सब जगह चोरी कर रहा है लेकिन इसके घर में कभी नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये सोते हुए भी देखता रहता है। तो वैसे केवल अगर भागवत में कोई अगर निद्रा अवस्था में भी रहेगा तो भी उसे लाभी लाभ है। तो ये प्रोत्साहित नहीं किया जाता, लेकिन एक भागवतम की महिमा बता रहा। तो वैसे जो अरति जो है, जो भागवतम सुनने के प्रति जो अरति है वो पहले नष्ट हो जाएगा, और पैति क्या होगा, वितृष्णा, जो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के विषय भोग करने की जो लालसा है, वैराइटीज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो लोग हमेशा ये वैरायटी देखते हैं, विभिन्नता, और श्लोक रूपात बताते डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नन अदर डिफरेंट देन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर, पॉइजन इन फ्लेवर। जो विभिन्न प्रकार के जो विषय भोग है वो केवल विभिन्न प्रकार के विष अलग अलग फ्लेवर में है, लेकिन है जहरी। और वैसे जो भी तृष्णा जो हमारे अंदर घुस चुकी है भोग करने की, जैसे कि अभी आप देखिए, जब भोजन के लिए जब बैठते हैं प्रसाद के लिए, तो भोजन के लिए जब बैठते हैं तो व्यक्ति को दाल राइस उससे वो सहमत नहीं होता, कुछ और भी चाहिए, तो उसके साथ अचार और फिर पापड़, ये सब वैरायटी उसे चाहिए। लेकिन अगर एक बैल को देख लिया जाए, अब जब बैल के सामने सूखा घास तो गिल्ला घास तो कुछ भी तो चबाता रहे, अब उसके लिए कोई भी तृष्णा नहीं है, लेकिन मनुष्य को कितने प्रकार की भी तृष्णा, विभिन्न प्रकार के विषय भोग का। तो ये जो इस प्रकार की जो वितृष्णा है उसका वो नष्ट होगा, और फिर क्या बताते शुद्धे, तो उसका सत्वम से शुद्ध है, तो वो इस प्रकार भागवतम कथा सुनने मात्र से वितृष्णा नष्ट होने से वो सतोगुण में आएगा। और जब व्यक्ति सतोगुण में आता है तो उसे अनेक अनेक प्रकार के जवाबदारी दिए जाते, क्योंकि अब सतोगुण में तो जवाबदारी को ठीक से निभा पाएगा। तो वो जब सतोगुण में आ गया तो उसे अब भागवतम के प्रति और उनका श्रद्धा जब बढ़ता है तो फिर आगे होता है शुद्धे, तब उसका चित्त शुद्ध होता है। और जब चित्त शुद्ध होता है तब बताया गया पांचवा, भक्तिर हरो तद पुरुषे च सख्यम, जब व्यक्ति इस प्रकार भक्तों के साथ बैठकर जब वो भगवान की कथा सुनता है, तब उनके भक्तों के प्रति जो उनका जो साक्ष्य जो भावना है वो और तीव्र बढ़ता है, क्योंकि भागवतम यही एकमात्र ग्रंथ है जिससे व्यक्ति आपस में जो संबंध को दृढ़तापूर्वक बना सकता है। और क्योंकि भक्तों के बीच में मतभेद उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है क्योंकि उन्होंने भागवतम को ठीक से नहीं श्रवण किया। भागवतम सुनने मात्र से जो भक्तों के बीच में जो तनाव चल रहे हैं वो एकाएक खत्म हो जाता है, क्योंकि उससे क्या पता लगता है, उससे भागवतम सुनने मात्र से उन्हें ये पता लगता है कि मेरा वास्तविक अस्तित्व क्या है और मेरा पहचान क्या है, और वो पता लगने के कारण उनका जो मिथ्या अहंकार है वो नष्ट होता है। और आपस में मतभेद क्यों होता है? आपस में लोगों के बीच में तनाव इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि व्यक्ति अपने अहंकार को पकड़ कर बैठे हैं, और जब व्यक्ति अपने अहंकार को पकड़ कर बैठता है तो वो किसी के साथ समझौता करने को तैयार ही नहीं रहता है। लेकिन जब भागवतम जितना वो श्रवण करेगा, उनका जब चित्त शुद्ध होगा, तो वो जो विनम्रता पूर्वक जब भावना उसके हृदय में जब प्रवेश करेगी तो आपस में भक्तों के बीच में भी उसका प्रेम बढ़ेगा। तो इसलिए बताया गया है कि जो मध्यम अधिकारी व्यक्ति जो होते हैं वो झगड़ा वगैरह करने में ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं। वो उसमें उसका तो केवल मन यही लगा रहता है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा को सुनूं। लेकिन जो कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं वो आपस में भक्तों के बीच में झगड़े में लगे ही रहते हैं। इसलिए जो भक्तों के बीच में जब झगड़ा होता है तो ये समझना चाहिए कि वो कनिष्ठ है, नियो फाइट, नियो फाइट, दे आर ऑलवेज इन फाइट। वो हमेशा झगड़े में लगे रहते हैं, इसलिए उसे ऐसे जो कनिष्ठ अधिकारी से उसे मध्यम अधिकारी तक उठने का प्रयास करना चाहिए। और ये भावना कब होगा? जब व्यक्ति अपने हृदय में दास की भावनाओं को प्रकट करेगा। इसलिए इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि ये हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, वी आर दास। एक बार वृंदावन में कुछ भक्त लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, मेरा नाम पुरुषोत्तम दास है तो तुम्हारा नाम परमात्मा, इस प्रकार वगैरह सब आपस में चर्चा कर रहे थे। प्रभुपाद जब डेजी एंट्री लिए तो उन्होंने देखा कि आपस में इस प्रकार चर्चा चल रहा है। प्रभुपाद कहने लगे, देखो नाम भले कुछ भी हो लेकिन उस नाम को भले कोई भूल भी जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन दास हमेशा याद रखना, क्योंकि हर नाम के बाद अंत में क्या है? दास, कि मैं सेवक हूं। और ये नाम व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि इससे व्यक्ति का आपस में जो सख्यम जो भावना है वो वास्तविक बढ़ेगा। आज के तारीख में पूरे विश्व भर में लोग विश्व शांति को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं, यूएनओ। तो वो जो अपने पूरे विश्व शांति के कमेटी बनाने वाले जो मेंबर लोग हैं, उन लोग ही उन लोगों के ब्रेक में, लंच में उन लोग मुर्गी वगैरह काट के खाते हैं, तो ये लोग क्या शांति रखेंगे? इसमें क्या आपस में साक्ष्य भावना उत्पन्न होगा? क्योंकि इन लोगों ने मूल जो सिद्धांत है उसी को उन लोग ने भूल गए हैं। इसलिए आपस में मित्रता पुरचे च साख्यम ये तब उत्पन्न होगा जब व्यक्ति श्रीमद् भागवतम की कथा को बराबर ध्यान से सुनेगा। तत् एव हरे हरामवत मनसे चेत, और उनका जो चित्त है पूरी तरह सुंदर बन जाएगा। कैसे? हराम, जैसे हार डालने से क्या होता है, गले में हार डालने मात्र से उसका जो न, न, जो रौनक है, उनका जो पहचान या उनकी जो देखने का जो नजारा है उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसमें सुंदरता बढ़ जाती है केवल हार डालने मात्र से। वैसे ही श्रीमद् भागवतम के संदेश को हार के रूप में अगर कोई धारण करके रखेगा, उसी क्षण उसके समस्त प्रकार के जो सुंदरता है वो उसी क्षण बढ़ जाता है। तो वैसे व्यक्ति ये सब छह प्रकार का उसे उसके जीवन में परिवर्तन होगा, तब जब वो अपने जीवन में श्रीमद् भागवतम के कथाओं को सुनने में बार बार लगाता है। और इसी को कहा गया अभ्यास योगेना। अगर अभ्यास योगेना करेंगे तो क्या होगा, माम इच्छाप्तुं धनंजय, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागेगी। यानी कि भगवान को प्राप्त कर लिए, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागेगी। और वो जगाने के लिए क्या करना होगा, जबरदस्ती व्यक्ति को भगवान का हरिनाम, भगवान के संदेश को सुनने के लिए जबरदस्ती अपने आप को लगाना पड़ेगा। और इस प्रकार वो अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। तो वो जो श्रीमद् भागवतम की कथा, उसे भक्त भागवत के द्वारा श्रवण करने मात्र से वो अपने जीवन को डाल सकता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। शास्त्र प्रो एनी कमेंट। तो आपका कुछ प्रश्न है? नौ दस तक मतलब आपका स्तर बहुत ऊंचा है, इनका रति बढ़ चुका है, श्रद्धा रति रति के स्तर पर है। श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रसाद लिखी जाएगा मत आज प्रभु जी को छुट्टी, आज आए थे सुबह, अच्छा शुक्रवार। हाँ सुनने में आया। अच्छा इसके लिए आज आप आए सुबह, अच्छा वाह। आपने तो नक्शा ही बदल दिया इसका, पूरा है। और आपके इसे क्या क्या कुछ नया इसे?
अभी पता लगेगा, रवि का फोन आएगा तो उसका पैसा उधर से कट गया रहेगा। तो मुझे कुछ पूछा नहीं है, इंस्टॉल तो ले लिया है, तो उसका अकाउंट का सब कुछ इसमें मेरे ईमेल आईडी में इंस्टॉल है, कॉन्फिगर किया हुआ है एक बार। तो ये डाउनलोड माने से जैसे पैसा कट गया रहेगा करके ये डाउट है मेरे का। अगर नहीं कट रहेगा तो फायदे में होंगे, कटा रहेगा तो 500 उसका रहेगा।
और आपने तीन चार बार ट्राई किया, बार बार उसने कटा रहेगा तो
दूसरा पैसा देना है। पांच बार ट्राई किया।
बाप रे,
ये भागवत है।
भगवत गीता दिखा भागवत में। अरे वाह, तो पासपोर्ट नीचे और
श्लोका,
हाँ
एक एक श्लोका है पासपोर्ट।
वाओ, ऐसा पन्ना बदलने जैसा,
श्लोका पन्ना बदलने जैसा, श्लोका बदलने।
और ऐसे करते तो
वो नहीं है, ऐसा है तो छोटी से गीता।
वाह जबरदस्त कर दिया प्रभु, बहुत बड़ा एक इच्छा थी मेरी।
गीता पहले कर दिया था अलग से।
अच्छा
गीता
खाली उसमें ये है क्या, श्लोक
क्यों श्लोक श्लोका अलग वाला मिलेगा क्या? खाली श्लोका,
खाली श्लोका वाला भी नहीं, इसमें तो खाली पॉटपोट और ट्रांसलेशन है।
चलो कोई बात नहीं, बहुत
खाली श्लोका वाला चाहिए क्या आपको? हिंदी में?
हाँ हिंदी में, इंग्लिश में,
इंग्लिश में नहीं मिलेगा, हिंदी में मिलेगा खाली श्लोका।
इंग्लिश में तो मजा आता। अच्छा विदेश या तो उसका, अरे ये या तो उसका अपने
मनीष श्लोक में, मनीष श्लोक नहीं।